पिछले अंक में हमने बात की थी लखनऊ के नाज अदा अंदाज की, एक गुलफरोश यानी फूल बेचने वाली की, और साकी आखिर पीने वालों से बोर क्यों हो गई, ऊब क्यों गई। और एक बात बताई थी कि बच्चन बाबू ने ये क्यों कहा, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। आज के अंक में बात करते हैं कुछ अधूरी प्यास की बात, कुछ प्यास बढ़ाने की बात, कुछ प्यास बुझाने की बात। और एक बात बताते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी शब्दों के हिंदीकरण की। हम अक्सर कहते हैं कि मधुशाला में ना तो छायावाद है, ना तो रहस्यवाद है, ना तो प्रयोगवाद है, इसमें यदि कुछ है तो जीवनवाद है। और इसकी कविताएं, मधुशाला की कविताएं यथार्थ की धरती पर अनुभवों और कल्पनाओं से सींच कर उपजती हैं। अब देखिए अगली कविता में कितना रोचक भाव है कि जब जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि आवश्यकता तो ढेर सारी होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है, किंतु जो मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होता है, जीरा यानी इतना छोटा सा। तो चलिए सुनते हैं। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। यानी मुझे पिलाने के लिए इतनी थोड़ी सी हाला लेकर आए हो और जो प्याला मुझे दिखाने लाए हो वो इतना छिछला सा है, इतना छोटा सा है, जैसे वो होते हैं चाय के कप जिसमें डबल लेयर होती है, जो बाहर से तो कप बड़ा दिखता है किंतु जब उसमें चाय डाली जाए तो बस जरा सी चाय आती है, दो चुस्की के बराबर। तो कवि यहाँ कहते हैं, मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। इतनी पी जाने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, सिंधु त्रिशादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। यानी इतना कम पीने से अच्छा तो है कि मैं सागर के बराबर प्यास लेकर ही मर जाऊं, क्योंकि आपने प्यास तो मुझे सागर के बराबर दे दी सिंधु त्रिशा, किंतु आपने जो मुझे मधुशाला दी है वो एक छोटे से बिंदु के बराबर दी है। इतनी पी जाने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं, सिंधु त्रिशादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। अर्थात प्यास तो इतनी सारी दे दी और हाला इतनी थोड़ी सी लेकर आए हो, वो भी एक छिछले से छोटे से प्याले में भर के। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, और शायद इन्हीं अनुभवों के आधार पर ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावतें बनी हैं, यानी कुछ इतना कम खाने को मिले कि दाढ़ में ही अटक जाए। बल्कि इससे भी आगे की बात है, गांव में एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे कि इतना कम खाना दिया है कि दाढ़ तो छोड़ो, दाढ़ी में ही अटक गया। जब आप सुबह की पहली चाय पीते हैं जो अच्छे से बनी हो, अदरक कूट के डाली हुई हो, घनघोर उबाल के साथ बनी हो, तो फिर एक छोटे से कप से क्या होगा। अब इसी बात से जुड़ी बच्चन बाबू की एक कहानी सुनते हैं। पिछले अंक में बताया था कि कैसे अचानक नेहरू ने बच्चन जी को दिल्ली बुला लिया था विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर काम करने के लिए। मुख्य उद्देश्य था कि आपको देश में हिंदी का प्रचलन बढ़ाना है, प्रांतीय भाषाएं अपनी जगह बनी रहें, किंतु साथ ही एक ऐसी भाषा भी हो जो सारे देश को जोड़ के रख सके। अब काम तो इतना महत्वपूर्ण दे दिया किंतु अधिकार कुछ भी नहीं। सरकारी दफ्तरों में जो ढर्रा चल रहा था वहां हिंदी का इस्तेमाल करना ही हीन समझा जाता था, यानी एक तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उन अनुभवों के बारे में विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल उस वक्त की एक दिलचस्प बात सुनिए। अंग्रेजी भाषा की टेक्निकल टर्म्स के हिंदीकरण के लिए दो समितियां बनी थी। एक थी वैज्ञानिक शब्दों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में, और दूसरी विज्ञानेतर शब्दों के लिए, यानी जो विज्ञान से जुड़े हुए शब्द नहीं हैं, उनके लिए बनी थी रामधारी सिंह दिनकर की अध्यक्षता में, जिसमें बच्चन जी भी सम्मिलित थे। किंतु इनसे पहले नेहरू जी जिस तरह से हिंदीकरण करवा रहे थे उसके उदाहरण सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम रखा गया पर राष्ट्र मंत्रालय। भला हो बच्चन जी का जिन्होंने इसे विदेश मंत्रालय का नाम दिया जो आज तक प्रचलित है, अन्यथा ये परराष्ट्र मंत्रालय ही कहा जाता जैसा कि 1967 तक था। और होम मिनिस्ट्री, उसको पहले कहा जाता था देश मंत्रालय या स्वराष्ट्र मंत्रालय, इसको भी बच्चन जी ने गृह मंत्रालय करवाया और आज तक हम इसे गृह मंत्रालय ही कहते हैं। अब इस तरह सोचिए, कस्टम शब्द, उसका हुआ सीमा शुल्क, कस्टम हाउस को कहा जाता था सीमा शुल्क सदन, और कस्टम हाउस ऑफिसर सीमा शुल्क सदन अधिकारी, सुनके ही चौपाई जैसा लगता है। जब दिनकर और बच्चन बाबू ने ये नाम देखे तो दोनों हंसे और कहा कि ये तो पद का नाम हुआ ना हुआ तुलसीदास की चौपाई हो गई। किंतु हिंदी का प्रचार प्रसार जिस तरह आधे मन से किया गया था, उसे देश में स्वीकार करना तो दूर बल्कि कई राज्यों में उल्टे विरोध ही हो गया। जैसे तमिलनाडु की राजनीति काफी समय तक हिंदी संस्कृत के विरोध के आधार पर चलती रही है और आज भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए सारे देश में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता रहा, किंतु तमिलनाडु में वहां ये AIR यानी एयर ही रही। इसीलिए कहा सिंधु त्रशादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला, यानी काम इतने सारे और अधिकार जरा से। खैर, कुछ इरादे अधूरे रह जाते हैं तभी तो जीवन आगे बढ़ता है। जैसे अगली कविता का भाव देखिए। क्या कहता है रह न गई अब तेरे भाजन में हाला, क्या कहता है अब न चलेगी मादक प्यालों की माला। यानी अब तो तेरे भाजन में, तेरे हाथ में जो पात्र था उसमें हाला बची ही नहीं, और अब वो जो मादक प्यालों की माला चलती थी वो भी अब नहीं चलेगी। क्या कहता है रह न गई अब तेरे भाजन में हाला, क्या कहता है अब न चलेगी मादक प्यालों की माला। थोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को, यानी थोड़ी सी पीकर जो प्यास बढ़ गई, जैसे कुछ थोड़ा सा मिल जाए तो उम्मीद बढ़ जाती है, किंतु जैसे ही प्यास बढ़ी तो पीने को कुछ बचा ही नहीं। यही भाव इस कविता में है। थोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को, प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। फिर से कुछ अधूरी प्यास की बातें, कुछ प्यास बुझाने की बात, कुछ प्यास बढ़ाने की बातें, कुछ ये कि जितना पियो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि होती है, उसमें जितनी समीधा डाली जाए, जितनी लकड़ी डाली जाए, लपटें उतनी ही ऊपर उठती जाएंगी। जो अग्नि होती है उसकी भूख प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो एक भाव तो यहाँ पर लालच का है और एक भाव है ताने का या उल्हाने का। जैसे पहले कहा था सिंधु त्रशादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला, अर्थात प्यास तो एक बैरल भर के दे दी और पीने के लिए पेपर बोट के साइज का पाउच थमा दिया। बताइए ये कोई बात हुई? और जब ऐसा होता है तो प्यास बुझने की बजाय बढ़ती ही जाती है। प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मृग तृष्णा या मिराज वाली बात है। कुछ मन को ऐसा मोहता है कि हम उसके पीछे भागते रहते हैं और जो नहीं मिल रहा होता है उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है। मदिरालय के संदर्भ में देखें तो जो होशियार साकी होती है वो पीने वाले को कुछ प्यासा ही छोड़ देती है, क्योंकि अघाकर जाने वाला यानी पूरी तरह से संतुष्ट होकर पीकर जाने वाला वो फिर पलटकर मधुशाला की तरफ नहीं देखता। रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है 48 लॉज ऑफ पावर, जो बात करती है पावर यानी सत्ता या शक्ति हासिल करने के अलग अलग तरीकों की और उन्हें अपने पास रखने की। हमारे जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो तो ये सब हथकंडे जन्म से ही जानते हैं। और ग्रीन साहब की ही एक और किताब है आर्ट ऑफ सेडक्शन। इन दोनों किताबों में एक कॉमन चीज है, एक कॉमन बात है कि यदि आप अपने सारे पत्ते एक साथ खोल देंगे तो अगली पारी के लिए कुछ नहीं बचेगा। अर्थात किसी को कुछ देना है तो थोड़ा थोड़ा दो, उसे अघाकर मत भेजो ताकि वो वापस आता रहे, जैसे कि आईफोन की नई फीचर्स या नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के क्लिफहैंगर्स। थोड़ी पीकर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को, प्यास बुझाने को बुलवा कर प्यास बढ़ाती मधुशाला। तो चलिए इसी बात पर प्यास और मिलने की बात अधूरी छोड़ते हैं अगले अंक के लिए, जहां हम बात करेंगे कि लोग चिंता क्यों करते हैं, प्यास बुझाकर भी बुझाने का आनंद क्यों नहीं आता, और एक बात होगी भाग्य के खेल और शेक्सपियर की। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके भावार्थों की, उससे जुड़े किस्से कहानियों की। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और चाय या कॉफी इतनी पिएं कि आपकी प्यास बनी भी रहे, बुझती भी रहे।